Yeah, you can hear it. Wow, lightning and thunder and Well, this
But
is it's that time.
in our Zoom, we are very fortunate to have His Holiness Bhakti Vighna Narasimha Swami Maharaj with us today. And it's a very great fortune. His Holiness is a senior disciple of His Divine Grace Srila Prabhupada. He joined the movement in 1971 in London, and immediately a year later he took the Brahminical also. His Holiness initially, I remember, was in Juve in those days, earlier days, and he used to be very much interactive with His Holiness Kamal Krishna Goswami Maharaj, doing a lot of seva in Juve. And then, of course, we know that he has been in very difficult areas like China and Taiwan, Malaysia, and the Far East, Singapore, and so many other countries like Philippines, where he has been extensively preaching and making devotees there and establishing ISKCON very firmly. Some years back, just 2 years back, I remember there was a huge concern, a lot of devotees from China who had come all the way and they were doing parikrama in Mayapur, so enthusiastic. And it was really mind-boggling to see them so dedicated. So thanks to Maharaj preaching in those areas, we are very fortunate to have Krishna consciousness there. His Holiness is also has been a faculty for our MI right from its inception, the Mayapur Institute. And His Holiness took sannyas in 1994 from His Holiness Kamal Krishna Goswami Maharaj. So welcoming Maharaj, and for his good health, a big Hare Krishna mantra before he starts the program. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, everyone. Thank you for giving me the opportunity to speak to you here this evening on this auspicious day of Pandava Nirjala Ekadasi.
Yes, Maharaj.
Are we having translation sentence by sentence or what?
Maharaj, I'm just waiting. You continue now, Maharaj, because he has not joined in. Or Rasamrita Prabhu, you are in? Or Yamango Prabhu is there? 1 second. Rasamrita Prabhu? Can you unmute Rasamrita Prabhu?
Yeah, yeah, Prabhuji, I am unmuted. Hare Krishna Prabhuji, thank you.
Yeah, yeah, please go ahead.
I can do the seva. Sure, Prabhuji, sure.
Go ahead.
So, do we do it one sentence at a time, is it?
Yeah, Maharaj, I think you can speak a little, two, three sentences, and then you'll summarize. It'll be faster. Because,
okay.
Yeah.
All right. So, as I was saying, today is a very auspicious day. Actually, the whole week is a very auspicious week. We will have several festivals this week.
Hare Krishna, so I हाँ तो मैं जैसे कि बता रहा था कि आज जो है बड़ा ही शुभ दिवस है और ये पूरा हफ्ता जो है ये बड़ा ही शुभ है. इसमें कई ऐसे उत्सव है.
Yes, today, well, first of all, yesterday we celebrated Ganga Puja, the appearance of Ganga.
तो कल गंगा पूजा था, appearance of गंगा जी.
No, from Srimad Bhagavatam, how Maharaj Bhagirath performed great austerity to bring Mother Ganga down to this planet.
तो हम श्रीमद् भागवतम में जैसे कि वर्णन किया गया है कि भगीरथ जी बहुत ही अथक प्रयास करके और गंगा को इस धरती पे लेके आए.
He was very concerned to liberate the sons of Maharaj Sagar from their offense against Lord Kapila.
तो महाराज सागर के जो पुत्र थे, जो उन्होंने कपिल मुनि के प्रति अपराध किया था, उनके वजह से काफी चिंतित थे वो.
संत महाराज सागर, they went looking for the horse. Maharaj Sagar was doing a sacrifice and the horse went missing. So his sons went searching and then they found the horse just beside Lord Kapila. Lord Kapila was sitting in meditation and they thought that Lord Kapila was responsible for taking the horse.
तो महाराज सगर वो एक यज्ञ कर रहे थे और उसमें यज्ञ का जो घोड़ा था वो उन्होंने छोड़ा था और महाराज सगर के पुत्र जो थे उस घोड़े को ढूंढते हुए निकले और उसको कपिल मुनि के आश्रम में पाया, तो उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने यह घोड़ा जो है वो चुरा लिया है।
So the sons of Maharaj Sagar, they had some evil intentions. They were thinking to do some bodily harm, physical harm to Lord Kapila. And as a result of their offense, because of their offense, they burned their own bodies into ashes.
तो सागर के जो पुत्र थे, उन्होंने सोचा कि क्योंकि इन्होंने ये घोड़ा ले लिया है, वो उनको कुछ क्षति पहुंचाना चाहते थे और उनसे वापस से घोड़ा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऋषि कपिल के प्रति अपराध किया, इसके लिए उनका शरीर जो है वो जल के भस्म हो गया।
And sometimes it's misunderstood. Sometimes people think that Lord Kapila burned them in his anger. Lord Kapila got angry and burned them to ashes. But no, Lord Kapila is the supreme Lord. He doesn't get angry. He's not overwhelmed by the situation. They burned themselves to ashes by their own offense.
तो कई लोगों में ऐसी भ्रांति है, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं कि महाराज कपिल भगवान जो है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको भस्म कर दिया, लेकिन कपिल देव जो है वो तो भगवान है, वो कभी क्रोधित नहीं हो सकते। ये सगर के पुत्र जो थे, उन्होंने अपने अपराध की वजह से वो अपने आप जल गए थे।
So in order to deliver them, the different sons, the descendants from Maharaj Sagar, they were doing their austerity, tapasya, trying to bring Ganga down to the earth. But without success until Bhagirath. It was Maharaj Bhagirath who, by his great tapasya and also because of his great devotion, that he was able to bring Mother Ganga down.
तो महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए बहुत सारे जो वंशज थे महाराज सगर के, एक के बाद एक उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया माँ गंगा को नीचे लाने के लिए, लेकिन भगीरथ तक कोई नहीं ला सका और फिर भगीरथ ने वो किया।
Now there are different opinions about the origin of Mother Ganga. Some people say it came from Lord Vamanadev when Lord Vamanadev was taking 3 steps of land that he pierced a hole in the covering of the universe. From that, the water of the causal ocean came in.
तो गंगा के उद्गम के बारे में भी कई भ्रांतियां हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान वामन ने जब अपने को त्रिविक्रम के रूप में विस्तृत कर लिया और उनके पैरों से जो कारण सागर था वो वहां पे उसको छेद करके और वहां से गंगा माता प्रकट हुई।
And some other people say it came, the water of the Ganges is water from the Kamandalu of Lord Brahma. That when Lord Brahma saw Lord Vamanadev taking his steps of land, he washed the feet of Lord Vamanadev with the water from his Kamandalu.
और कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि गंगा का उद्गम जो है वो ब्रह्मा जी के कमंडलू में से है और जब उन्होंने उनके भगवान के पैर धोए थे और उनके कमंडलू में जो पानी था उसमें से माँ गंगा प्रकट हुई।
So different opinions about how Ganga came, but anyway, she was flowing in the heavenly planets as the Mundakini, and then Maharaj Bhagirath, he is trying to bring Ganga down to earth, but she was reluctant to come, and she had her reasons. She said, if I come down there, the force of my water on the planet Earth, it could knock the Earth planet out of its orbit. It could bring the Earth out of its orbit and bring it down into the bottom of the universe.
तो हालांकि माँ गंगा के उद्गम के बारे में अनेक अनेक मत है, लेकिन गंगा जो थी वो ऊपर के जो प्लैनेट से उसमें बहती थी और जब गंगा माँ को लाने के लिए भगीरथ ने प्रयास किया तो वो आने के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने कहा कि मैं धरती पे अगर आऊंगी तो मेरा वेग इतना प्रबल है कि उस प्रबल वेग से मैं पूरा धरती के नीचे चली जाऊंगी और धरती के नीचे का जो आसर है वो हिल जाएगा और पूरा का पूरा मैं नीचे समा जाऊंगी।
And then another, Maharaj Bhagirath, he said, well, we can solve that. He said, we can ask Lord Shiva to take that water on his head because Lord Shiva is a great devotee. It's very happy to get the water which has washed the feet of Lord Vamanadev. He knows that the Abhishek water is taking it on his head. It's very nice for him. So he's happy about that. It's always wet with that water from the Ganges.
So Bhagirath Maharaj ne kaha ke maya aap uski chinta mat kijiye. Hum ye problem jo hai wo solve kar denge. Aur jab aapka veg se aap jab niche aoge, तो हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको अपने शिर में धारण कर ले, और क्योंकि ये वामन देव का चरणामृत है जो भगवान शिव अपने सिर पे लेते हैं और हमेशा रखते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है।
So the Lord Shiva took that water on his head and he held it on his hair some time. The Maharaj Bhagirath was becoming worried. What happened? I thought the Ganga was coming. What's happened? He had to beg Lord Shiva to release the Ganga from his hair.
तो शिव जी ने माँ गंगा का ये जो पानी है इसको अपनी जटा में धारण कर लिया और कई समय तक इसको रखे रहे, तो भगीरथ मुनि जो थे वो थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अरे शिव जी, आप ये क्या कर रहे हो, गंगा को तो नीचे लाना है और आप अपनी जटा में धारण करके रखे हैं, कृपया आप इस पानी को छोड़िए।
The other problem was Mother Ganga was worried about all the sinful people coming and bathing in her water. And she thought, I don't want to take the sinful reactions for all these people that will come and bathe in my water. I will carry all their karma. I don't want that.
और दूसरी समस्या ये थी कि माँ गंगा सोच रही थी कि सारे के सारे लोग जो पाप करते हैं वो मेरे पानी में स्नान करेंगे और अपना सारा पाप छोड़ देंगे, तो वो उनका ये पाप लेना नहीं चाहती थी, इसके लिए गंगा माता का इस प्रकार से विचार था।
Taking karma, taking someone's karma is a serious thing. One should be very careful about that. Mother Ganga, she's so great, but even she was worried about taking the sinful reactions.
तो किसी का कर्म अपने पे ले लेना या उसको धारण करना ये बहुत ही गंभीर है, और हमको सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी और का कर्म जो है वो लेवे नहीं। इवन माता गंगा जो थी वो इसके प्रति काफी गंभीर थी कि किसी के कर्म को धारण ना करें।
So of course, in the Krishna consciousness movement, we also try to be very careful that before somebody is accepted as a disciple, before the spiritual master agrees to accept a disciple, we like to make sure that he's strictly following all the principles, doing the chanting.
So Krishna Bhavanamrit में हम भी काफी सतर्क रहते हैं। जब किसी को शिष्य के रूप में हम जब लेते हैं तो बहुत ही सतर्कता से ध्यान रखते हैं कि वो जो है बहुत ही अच्छी तरह से उसके कर्म हो।
People come bathe in the Ganga and then they go back and do more sins. They don't take the opportunity to really purify themselves. They're just like the elephant who comes and takes a bath and rolls in the dirt.
तो लोग गंगा में केवल आते हैं और स्नान करके अपने जो पाप है उसके अंदर बस धोने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं कि हमें शुद्ध होना है। जैसे एक हाथी होता है, वो स्नान करता है, वो केवल आता है स्नान करके और फिर अपने शरीर पे धूल डाल देता है।
So, the real purpose of bathing in the Ganga is not just to get rid of our sins. But it's to get some purification of the heart, that just like we worship Tulsi, we can get devotion. In the same way, if we bathe in Mother Ganga respectfully, we can also get devotion from her.
तो गंगा में स्नान करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम बस केवल अपने पाप को धोए, मुख्य उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से शुद्ध हो। जैसे हम तुलसी माता का संग करते हैं तो जिससे बहुत ही हम शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारा ये विचार होना चाहिए कि केवल हम पाप धोने के लिए गंगा में ना जाए, लेकिन गंगा में अगर हम स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रकार से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है।
Anyway, Maharaj Bhagirath, he pacified Mother Ganga. He told her, don't worry about getting sinful reactions from all the people, the ordinary people, but you should know that if you come down to the earth planet, there are many saintly persons who will also come and bathe in your water, and they will take away all these sins which are there in the water. By their presence, by them bathing in your water, they will give you more, much more benefit than the harm which is done by these sinful people.
Bhagirath Maharaj ne Ganga Maiya se ye prarthana ki कि मैया आप उन लोगों की चिंता मत करो जो आके पाप आप में धो के जाएंगे, लेकिन इस धरती पे ऐसे बहुत अच्छे साधु संत हैं जो वो भी आएंगे और आप में स्नान करेंगे, और वो स्नान करके और जो भी ये जो पाप आपके पाप है वो सब उसके अंदर से वापिस से ले जाएंगे तो आप आपको कोई असर नहीं होगा.
Right? Have you all taken bath in the Ganga? I hope you've all had a chance to take bath in the Ganga when you come to Mayapur.
तो महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप सभी लोग हम सबसे कि आप हम सब ने गंगा में स्नान किया है कि नहीं. तो हम जब मायापुर आए तो मायापुर में गंगा में हमको स्नान जरूर करना चाहिए.
Yeah. If you don't take the bath there physically, then you take a bath in the Ganga mentally, in your meditation.
तो यदि आप शारीरिक रूप से गंगा में स्नान नहीं कर पाते हो तो भी मानसिक रूप से मनन करते हुए हम गंगा में स्नान कर सकते हैं.
We can take a bath in the mind. This is also a very effective way to worship Mother Ganga in the mind. Even you don't, you're far away from the Ganga. You can also invoke Ganga in the water. You chant a mantra and call all the holy rivers by the mantra.
तो हम मानसिक रूप से भी गंगा में स्नान कर सकते हैं और अपने मन के द्वारा मनन करते हुए हम गंगा के अंदर स्नान कर सकते हैं. हालांकि हम बहुत दूर हो सकते हैं गंगा मैया से भी, लेकिन हम गंगा को अपने घर में भी बुला सकते हैं और हम जब हमारे घर पे जब स्नान करें तो ये मंत्र का जप करके और गंगा मैया का आवाहन कर सकते हैं.
When we do puja, we usually call the holy rivers into the Avahan. So the same way you can also call the holy rivers to come. And then take your bath in the holy river.
तो जब हम स्नान करते हैं और जब ये पवित्र नदियों को याद करते हैं तो ये पवित्र नदियां जो है वो मानसिक स्मरण के द्वारा हमारे स्नान में हम आ जाती है.
So at this time with the lockdown, even here in Mayapur, there's some restrictions. You know, they don't let everybody go over to Ganga. We don't want to go over there because there may be other, there's many other people there. You don't want to risk contaminating devotees.
तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो हालांकि मायापुर में भी गंगा में जाके स्नान करने के लिए कुछ आपत्ति है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह होती है और उसमें संक्रमण फैलने का भी कोई एक आसार होता है. इसके लिए गंगा में जाना अभी अलाउड नहीं है.
So Lord Chaitanya Mahaprabhu was very fond of taking bath in the Ganga. We know for the first 24 years of his pastimes, he was here in Mayapur and he was regularly taking his bath in the Ganga and enjoying bathing there in the Ganga with all of his friends.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमेशा गंगा में स्नान करते थे और जैसा कि हमको ज्ञात है कि अपने जीवन के पहले 24 वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर में रहे और मायापुर में काफी उन्होंने अपनी लीलाएं की और इस लीलाओं में कई बार वो गंगा में स्नान करते थे अपने मित्रों के साथ में.
When we go on the Navadvip Parikrama, we go to a place called Samudragar. And this Samudragar, there's a pastime took place there. Bhaktivinoda Thakur describes in Navadvip Mahatmya how there was a conversation between the ocean, Samudra, and the Ganga. And they were talking to each other, and Mother Ganga was lamenting how Lord Chaitanya is bathing in my water, but he's going to take sannyas, he's going to leave me, he's going to go away, he will go to Puri, and he'll be bathing there in the sea every day.
हम जब नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं तो वहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम है समुद्र घाट और भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा नवद्वीप महावात्य में ये इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार से समुद्र और गंगा इन दोनों में संवाद होता है और गंगा मैया समुद्र से कहती है कि मैं अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित समझती हूँ कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आके और मुझमें स्नान करते थे लेकिन अब मुझे देख के बड़ा ही खेद हो रहा है कि आगे जाके वो सन्यास धारण कर लेंगे.
But Samudra told Mother Ganga, you don't have to lament. Lord Chaitanya eternally resides in Navadvip Dham. Because Navadvip is a Dham. Dham means the eternal residence of the Lord. Mahaprabhu eternally resides here.
तो समुद्र ने गंगा से कहा कि आप चिंतित ना हो, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो नित्य नवद्वीप में यहाँ पे मायापुर में रहते हैं, क्योंकि मायापुर जो है वो एक धाम है और इस नवद्वीप धाम में भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु वो नित्य निवास करते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।
So it said when Lord Chaitanya was present here in Navadvip, at that time the ocean came all the way up to Navadvip so that the ocean could also have darshan of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
तो जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में थे तो समुद्र भी जो था वो बड़े ही प्रवाह के साथ बहता हुआ और वो ऊपर आया था सिर्फ ये जानने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु का वो दर्शन कर सके।
So Mother Ganga of course is the, it's been the place of many pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu and also Rupa Goswami. For example, Rupa Goswami met Lord Chaitanya at Triveni, at the Prayagraj, and it was on the bank of the Ganga. Lord Chaitanya spoke to Rupa Goswami for 10 days and enlightened him in the science of Bhakti Yoga.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में माता गंगा जो है वो उसका बड़ा योगदान है, और इवन जब श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे तो वे प्रयाग में त्रिवेणी संगम पे गंगा के किनारे वहां उनको मिले थे, जहां पर 10 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी थी।
And Srila Prabhupada also, he came to Kumbh Mela couple of times, 71 and again in 77, Prabhupada came and attended with the devotees. And Prabhupada also took some drops of water on his head, respected the holy water.
और श्रीला प्रभुपाद जी भी कई बार कुंभ मेले में जब गए 1971 में और 1977 में, तो वहां पर प्रयाग में वो गंगा के में जाते थे और बड़े ही प्रेम से गंगा का पानी लेके अपने सिर पे छांटते थे, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी कई बार वहां गए।
But Srila Prabhupada instructed the devotees that actually the bathing was not so important for them. He said, because that bathing, people take bath there, they want to get liberation, but that liberation, that's available anytime for devotees. For a devotee doesn't have to worry about liberation. They don't get love of God just by bathing at the Sangam at an auspicious time. These people come there to bathe there just to try to get liberation. But devotees engaged in devotional service, they're already liberating souls. They don't have to worry about liberation. Their goal is to get Krishna prem.
तो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमेशा अपने भक्तों से कहा कि केवल ये जरूरी नहीं है कि हम बस गंगा में जाके स्नान करें और अपने पाप को धोए। बहुत सारे लोग जो है गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं केवल एक इच्छा लेके कि उनको मुक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन एक भक्त जो होता है उसके लिए मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। हम जो है वो मुक्ति में इतने आकर्षित नहीं होते, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो है कृष्ण प्रेम। तो एक भक्त जो होता है जब कृष्ण प्रेम के पीछे जाता है तो मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है।
This is very extensively described in the Brihad Bhagavat Amrita by Sanatana Goswami, where he describes about Gop Kumar, how Gop Kumar got a mantra from his guru. Gop Kumar was a cowherd boy from Govardhan. But he met a guru, he met a powerful mystic yogi, and he gave him a mantra. By that mantra, Gop Kumar was able to travel to different places, and he came all the way up to Satyaloka, to the planet of Lord Brahma. And there he was discussing with all the personified Vedas and the different personifications of the different scriptures, the Puranas, the Agamas, and the Upanishads. They were all there and they were discussing about the importance of liberation, and it was conclusively decided that liberation is not important for a devotee.
तो बृहद भागवतामृत में इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन आता है कि किस प्रकार से ये जो इसमें कथा है, जैसे गोप कुमार है जो कि एक ग्वाला था और उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, अपने गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ था, और उस मंत्र की शक्ति से वो कई जो प्लैनेट्स है उसमें ट्रैवल कर सकता था, और वो करते करते वैकुंठ तक चला गया, जहां पर वो जाके और जो हमारे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, उन सब से उनकी वार्तालाप होने लगी। और
वहां पे
सर महाराज, और वहां पे जो है वो मुक्ति के बारे में भी बात हो रही थी।
We also see Haridas Thakur, when Haridas Thakur was asked about the power of chanting Hare Krishna, Haridas Thakur said, just by chanting Namabhas, one can get liberation.
तो हरिदास ठाकुर भी ये समझाते हैं, जैसे किसी ने जब कहा हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हम जब नाम लेते हैं तो केवल नामाभास के स्तर से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
And the example of this liberation by chanting Namabhas was Ajamila. That Ajamila had been a greatly sinful person. He was a Brahmana, but he had become very degraded. And he'd left his wife and he was with another woman, low-class woman, and he was very sinful. But somehow he named his youngest son Narayan. And because he was always calling the name of his son Narayan, he got the benefit of Namabhas and all of his sins were destroyed. And Yamadutas could not take him. He was protected by the Vishnu Dutas.
तो नामाभास से मुक्ति प्राप्त होने का एक अच्छा उदाहरण अजामिल का है। अजामिल जो कि एक ब्राह्मण था, लेकिन वो नीचे गिर गया था और उसने एक वैश्या से शादी कर ली थी, अपनी पत्नी को भगा दिया था, और उस वैश्या से उसको एक छोटा सा पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम उसने नारायण रखा, और हमेशा नारायण अपने पुत्र को बुलाते रहता था। और जब उसका अंत समय आया तो उसने नारायण का नाम लिया, तो जो यमदूत उसको पकड़ने के लिए आए थे उनको विष्णु दूतों ने हटा दिया और उसको आसानी से ही मुक्ति प्राप्त हो गई।
So Haridas Thakur said, yeah, Namabhas, very easy to get liberation for devotee. But that's what the goal of the impersonalists, you know, the Mayavadis, the Gyanis, their goal is to get liberation. But for a devotee, we begin bhakti yoga on that platform. As described in Bhagavad Gita, Brahma Buddha Prasannatmana Sochati Nakanchati Tamasarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labhate Param. Bhakti yoga begins on that platform of Brahma Buddha, knowing that we're not the body.
हरिदास ठाकुर भी ये बताते हैं कि नामाभास के स्तर पर ही केवल मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन हम वो लोग नहीं हैं जो इसको मुक्ति में यू नो रुचि रखते हैं। कई दूसरे ऐसे लोग हैं जो मुक्ति में रुचि रखते हैं और उसके लिए वो करते हैं, लेकिन भक्त जो होता है उसकी भक्ति उस मुक्ति के स्तर से ही शुरू होती है, जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। तो भक्त जो भक्ति करते हैं वो इस ब्रह्म भूत के स्तर से करते हैं और मुक्ति के बाद में वो आता है।
So Srila Prabhupada said our real business in coming to something like Kumbh Mela was to distribute books and do preaching work, not just to take the bath.
तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य कुंभ मेला में आने का ये हमारे ग्रंथ और प्रसाद वितरण करना है, ना कि केवल गंगा में स्नान करना।
Srimad Bhagavatam describes that one who comes to a holy place just to take a bath, then he's like a saiva gokara. He's like a foolish animal, like a cow or an ass.
Srimad Bhagavatam iska varnan karta hai ki jo log keval tirth sthanon mein aate hain snan karne ke liye, wo keval gokhar ke jaise hain, ya to gaay hain ya gadhe hain.
This is statement of Srimad Bhagavatam like that.
To ye Srimad Bhagavatam mein varnan kiya gaya hai.
So Lord Chaitanya, he came there to Benares, he came there to Allahabad, Prayagraj, as they call it now, and he instructed Rupa Goswami for 10 days there in the science of devotion at the Das Ashwamedha Ghat.
So Sri Chaitanya Mahaprabhu, Allahabad, Prayag, jaisa bhi kaha jata hai, wahan par aaye, aur Das Ashwamedha Ghat pe 10 din tak Shri Rupa Goswami ko sikshayen di.
And we also hear how, oh, by the way, Ajamila, we were talking about Ajamila, how he was sinful, but he chanted Namabhas and he was saved by the Vishnu Dutas. So when he was saved by Vishnu Dutas, then he went to Hardwar and he stayed in the Vishnu temple in Hardwar. And eventually he gave up his body on the bank of the Ganga.
So, जैसे कि हम अभी अजामिल की बात कर रहे थे कि जिसको नामाभास से ही मुक्ति प्राप्त हो गई और विष्णु दूत उसको बचाने के लिए आए थे, तो उसके बाद अजामिल भी जो है वो हरिद्वार गया और हरिद्वार जाके गंगा के किनारे उसने तपस्या की और बाद में अपना शरीर उसने गंगा के किनारे ही छोड़ दिया।
And Lord Kapila, he also made his ashram at Ganga Sagar, where the Ganga flows into the ocean. Lord Kapila Muni's ashram is there.
तो कपिल मुनि ने अपना आश्रम भी गंगा के किनारे बनाया, जहां पर गंगा का प्रवाह हो रहा था वहीं कपिल मुनि का आश्रम है.
So Mother Ganga is so very special, very dear to all of us devotees. We all pray to Mother Ganga. Maharaj Parikshit also prayed that Mother Ganga would bless him. He came to give up his body to wait for his cursing to take effect. He came to the banks of Mother Ganga to hear Srimad Bhagavatam and wait for the snake bird to appear to bite him. The banks of Mother Ganga.
तो गंगा मैया जो है वो हम लोगों के लिए बहुत विशेष है और भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है. और जैसे कि महाराज परीक्षित है, वे भी जब उनको श्राप लगा था तो वे गंगा के किनारे आए थे और वहां पर बैठ के उन्होंने भागवत सुनी और उसके बाद में गंगा के किनारे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया.
So we were celebrating the appearance of Mother Ganga yesterday. Yesterday was also the appearance day of some great acharyas like Baladeva Vijayapusan, who gave us a wonderful commentary on Vedanta Sutra. He wrote the Govinda Bhashya, which is his commentary on Vedanta Sutra. The problem came that Ramanandi Vaishnavas had challenged. They were telling the king of Jaipur that the Gaudiya Vaishnavas are not a bona fide sampradaya, that they don't even have a commentary on the Vedanta Sutra, and you shouldn't accept them as a bona fide sampradaya. The king of Jaipur, of course, had accepted Radha Govinda into his temple.
तो जैसे कि कल हम गंगा मैया का आविर्भाव दिवस मना रहे थे और बहुत ही अच्छा उत्सव है ये, और साथ में हमारे वैष्णव आचार्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, इनका भी तिरुभाव दिवस था. तो बलदेव विद्याभूषण जो है, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पे गोविंद भाष्य ये लिखा, और उस समय की बात है कि रामानंदी संप्रदाय के जो लोग थे वो जयपुर के राजा को कहने लगे कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है वो एक प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है, तो इसके लिए इनको भगवान की पूजा करने नहीं देना चाहिए. हालांकि उस राजा ने राधा गोविंद जी को अपने महल में रखा था और उन्होंने ऐसा कहा था कि ये वैष्णव संप्रदाय जो है बोनाफाइड नहीं है.
So the king of Jaipur was very disturbed. He was under a lot of pressure from these Ramanandi people. So he sent a message to Vrindavan, and the message came to Vishwanath Chakravarti Thakur. But at this time, Vishwanath Chakravarti Thakur was in old age and in poor health. He could not travel. There was no transportation. It was not possible for him to come. So Baladeva Vijayapusan had been there. And Baladeva Vijayapusan was initiated in the Madhva Sampradaya. But he'd heard about the teachings of Gaudiya Vaishnavism. And he came there and he stayed with Vishwanath Chakravarti Thakur, and he learned all the teachings of the Goswamis and everything. And he was very much acquainted with the teachings of the Goswamis. So Vishwanath Chakravarti sent Baladeva Vijayapusan there to Jaipur to meet the challenge of the Ramanandis.
तो ये जो जयपुर के राजा थे ये बड़े तनाव में थे क्योंकि रामानंदी संप्रदाय के लोग उन पे बहुत प्रेशर डाल रहे थे, और इस वजह से वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने वृंदावन में संदेश भेजा कि किसी भी प्रकार से उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ये बात कही. और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे खुद वहां पर ट्रैवल करके नहीं आ सकते थे. तो बलदेव विद्याभूषण, जो कि हालांकि मध्व संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन वे वृंदावन में आके और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सानिध्य में रह के उनसे सारी गौड़ीय वैष्णव की शिक्षा और सिद्धांत उन्होंने हासिल किया था, तो उनके आशीर्वाद को लेके और वो गए वहां पर जयपुर में.
Nobody had written a commentary. None of the Goswamis had written a commentary on Vedanta Sutra because they considered Srimad Bhagavatam to be Vyasadeva's own commentary on the Vedanta Sutra. And Baladeva Vijayapusan told the king of Jaipur that we don't have a commentary because commentary is already there from Vyasadeva. It's the author's own commentary. He's the best person to write a commentary on the Vedanta. He compiled the Vedanta, so he's the best person to explain it. And he has done in the Srimad Bhagavatam. But however, the Ramanandis, they would not accept this. They said, no. Everybody else has got their own commentary. Even Shankaracharya, he has his commentary on Vedanta Sutra. And Ramanuja has a commentary. Marka has a commentary. Vishnu Swam, they all have commentary on Vedanta. Where is the Gaudiya Vaishnava commentary? If you're a bona fide Sampradaya, where is your commentary? So Baladeva Bhujabhusani said, all right, then I will write one. And he went, first of all, he went to see Radha Govindji, and he prayed to Radha Govinda. And with the blessings of Radha Govinda, he then retired to some place near, just in the outskirts of Jaipur, in the mountains there. There's a place there where it's a holy place, you can go there. And he went there and he sat there and he wrote this commentary, which is called Govinda Bhashya. He called it Govinda Bhashya. He said, Govinda spoke to me the commentary of Vedanta. And Srila Prabhupada appreciated so much this commentary. Srila Prabhupada dedicates his Bhagavad Gita to Baladeva Vijayabhusan for writing this Govinda Bhashya.
हमारे गोस्वामी ने कि किन्हीं ने भी वेदांत सूत्र पे अपनी टीका नहीं लिखी थी क्योंकि वे सभी जानते थे कि वेदांत सूत्र पे जो नेचुरल टीका है वो श्रीमद् भागवतम है और श्रील व्यास देव जी है उन्होंने ये टीका जो है श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र में टीका के रूप में लिखा है तो इसलिए उन्होंने नहीं लिखा था। तो ये रामानंदी संप्रदाय वाले जो लोग थे वो कहने लगे कि नहीं 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 हम ये है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि ये टीका जो है स्वयं व्यासदेव जी ने लिखी है और नेचुरल कमेंट्री है इसकी तो इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 आपकी अपनी खुद की टीका होनी चाहिए। शंकराचार्य की टीका है, रामानुजाचार्य की टीका है, विष्णु स्वामी की है, निम्बार्काचार्य की है, सब लोगों की टीका है लेकिन गौड़ीय वैष्णव की टीका कहाँ पे बताइए। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं स्वयं एक टीका लिखूंगा। और फिर वे भगवान गोविंद देव जी के पास जाके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने गए और बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि ये गोविंद भाष्य मैंने लिखा है क्योंकि भगवान गोविंद देव ने स्वयं उनको डिक्टेट किया था ये गोविंद भाष्य और ये ले जाके और उन्होंने प्रस्तुत किया।
So when Baladev came with the commentary and they all read it and they were all astounded that oh he had written so wonderfully, everybody was impressed. And they all accepted that this is the Gaudiya Vaishnava Sampradaya is right, there's nothing wrong. And the king was so pleased that he made Govinda the king. He put Govinda ji as the king of Jaipur and he put himself as the servant of Govinda ji.
So, ek aur cheez, jaise ki Prabhupada ji itna impress hue ye Baldev Vidyabhushan ji ke karya se, ki unhone apni jo Bhagavad Gita jo likhi commentary, wo Bhagavad Gita ki tika jo hai, वो बलदेव विद्याभूषण को अर्पण की है। और बलदेव विद्याभूषण जब अपनी ये टीका लिख के और रामानंदी संप्रदाय और राजा के पास गए और उन्होंने जब ये टीका पढ़ी तो राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उन्होंने इसको स्वतः स्वीकार कर लिया। रामानंदी लोगों ने भी इसको स्वीकार किया और राजा ने भगवान गोविंद देव को जयपुर का राजा बना दिया और खुद एक सेवक के रूप में उनकी सेवा करने लगे।
And Srila Baladeva Vijayabhusan also wrote commentary on Bhagavad Gita, and Srila Prabhupada's own Bhagavad Gita follows very closely in line with Baladeva Vijayabhusan's commentary on Bhagavad Gita.
So Baladeva Vijayabhusan ne Bhagavad Gita pe apni tika likhi hai, aur Srila Prabhupada ji ne bhi apne jo tatpare likhe hain, ye Baladeva Vijayabhusan ki tika se bahut hi mel khate hain, aur bilkul unhi ka ek mana leke और उन्होंने ये टीका लिखी है।
So yesterday we celebrated his appearance day, a very important acharya in the line of the disciple succession.
तो हमारे गौड़ीय वैष्णवों में बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य है बलदेव विद्याभूषण जिनका आविर्भाव दिवस हमने कल मनाया।
And also we had the appearance day of Ganga Devi, Ganga Devi, the daughter of Lord The daughter of Lord Nityananda. Lord Nityananda was married. He married two sisters, Janava and Vashoda. Vashoda. And Vashoda, she conceived two children. One was the Virbhadra, and the other was Ganga. Ganga, the daughter. And she was actually an incarnation of the river Ganga. She came as the daughter of Lord Nityananda.
So, kal गंगा माता गोस्वामी ने इनका भी आविर्भाव दिवस था. तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, भगवान नित्यानंद ने विवाह किया था दो बहनों से, जानवा और वसुधा. और वसुधा के दो पुत्र प्राप्त हुए थे, एक वीरभद्र और दूसरा गंगा. तो ये जो गंगा है, ये गंगा मैया, गंगा माता का ही स्वरूप है, आविर्भाव है, जिनको गंगा माता गोस्वामी कहते हैं.
And they were telling, we were hearing yesterday, that when Ganga was born, at first she would not drink the milk from her mother's breast. And they were very worried what was wrong. But then they got the instruction, they got some divine instruction that she should take Krishna mantra first from Janava. Janava was a sister of the mother of the child. And so Janava gave Krishna mantra into the ear of the child. And after she got Krishna mantra in her ear, then only she drank the milk of her mother's breast.
हरि बोल. तो गंगा का जब जन्म हुआ था, तो जन्म के उपरांत वो अपने माँ का दूध ग्रहण नहीं करती थी. तो सभी लोगों को चिंता होने लगी कि ये बालिका जो है, ये माँ का दूध क्यों नहीं पी रही है. फिर उनको कुछ बहुत ही दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई, और उसमें कहा गया कि इसको पहले कृष्ण मंत्र दिया जाएगा जानवा माता के द्वारा. तो जानवा जो कि उनकी मौसी थी, उन्होंने फिर उनको कृष्ण मंत्र दिया, और उस कृष्ण मंत्र को प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने दूध ग्रहण किया.
And so today of course is Ekadasi, Pandavanirjala Ekadasi. It's some people, they like to do full fasting on this day. They say that Bhima, because Bhima, he has a voracious appetite. He likes to, you know, he works very hard. But he also has a big appetite. There's a lot of hard work, so he's allowed to eat a lot. But he had great difficulty to observe Ekadasi. So he got the benediction that you just observe Ekadasi in the year one time, but you do the full fasting, no water even. And that way you get the benefit of doing the Ekadasi for the whole year. So that was pleasing to Bhima because he found it difficult to observe the fasting.
आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव निर्जल एकादशी भी है, और आज के दिन कई भक्त लोग जो है वो पूर्ण उपवास करते हैं. लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, महाभारत में प्रसंग आता है कि भीम जो था वो उपवास नहीं कर पाता था, क्योंकि उनको वृकोदर कहते हैं, और उसकी जठराग्नि में एक विशेष प्रकार की अग्नि हमेशा प्रज्वलित हुआ करती थी. और भीम हालांकि बहुत ही ज्यादा अथक मेहनत करते थे, लेकिन उनको बहुत ज्यादा भोजन करने के लिए भी चाहिए होता था, तो इसके लिए वो एकादशी का व्रत पालन नहीं कर पाते थे. तो फिर उनसे कहा गया कि आप केवल साल में एक एकादशी का व्रत पालन करो, लेकिन पूर्ण रूप से उसका पालन करो, तो इस प्रकार से आपको सारी एकादशी करने का फल प्राप्त होगा.
So, Prabhupada tells us, of course, that Ekadasi is a day which is very dear to Lord Krishna, and definitely we have to observe fasting on it. But Ekadasi fasting, as taught by Prabhupada, was that we should not eat beans or grains, which means no chapati, no rice, no dal also, and no beans.
तो एकादशी का व्रत जो है, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे भक्तों को करना चाहिए, और बहुत ही अच्छी तरह से इसका पारण करना चाहिए, क्योंकि ये माधव तिथि है और भक्ति जननी है. तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस एकादशी के दिन में कोई भी ग्रेन या बीन, मतलब अन्न जो है, वो किसी प्रकार का ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे कि चपाती, रोटी, चावल इत्यादि जो है वो आज के दिन नहीं खाना चाहिए.
Prabhupada taught us the real purpose of Ekadasi is to increase our hearing and chanting.
तो प्रभुपाद जी ने हमें बताया,
do more hearing and Prabhupada liked us to chant 25 rounds on Ekadasi. But we would also have like a, you know, we'd have like a half day fast. We wouldn't take breakfast. We'd take a full lunch. And like that. We would do normal work. Usually just a half day. We clean the temple in the morning. And then the afternoon we go out for preaching. So like that, a little bit, a little different from other days because it's Ekadasi. And on Ekadasi, the modes of nature are very powerful. So we want to be very careful. We want to really increase our absorption in Krishna by hearing and chanting.
तो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको ये बात बताई है कि एकादशी करने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हमारा जप और हमारा श्रवण जो है उसको बहुत बढ़ाए और उस पर हमारा ज्यादा मुख्य ध्येय होना चाहिए उसको करने का. लेकिन ऐसे जैसे हम लोग कई बार ऐसा है कि एकादशी के लिए हम सुबह नाश्ता भी करते हैं, दिन में लंच भी करते हैं क्योंकि हमको प्रचार कार्य के लिए जाना पड़ता है. तो कई भक्त लोग जो है वो इस प्रकार से एकादशी करके थोड़ा अलग रूप से और कार्य करते हैं. लेकिन एकादशी के दिन जो प्रकृति के जो गुण है ये भी बहुत प्रभावित करते हैं. इसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको भगवान के श्रवण और कीर्तन में अपना समय बिताना चाहिए.
Srila Bhaktivinoda Thakur has glorified Ekadasi in one of his songs. He's written, of course, so many songs, but there's one song which describes the different processes of devotion called Shuddha Bhakata. And he says there, Madhavatiti Bhakti Janani. The meaning is that by observing the holy days, like Ekadasi and Janmashtami, then it becomes the mother of devotion for those devotees who take shelter of them. So we get a lot of bhakti by observing more spiritual practice on this day. You get a lot of credits if you do more chanting and seva.
तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य है उन्होंने हालांकि बहुत सारे भजन लिखे हैं लेकिन एक भजन लिखा है जिसके अंदर भक्ति के अलग अलग प्रक्रियाएं वो बताते हैं जिसका नाम है शुद्ध भक्त. तो जिसके अंदर वो कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी. तो उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से ये एकादशी और जन्माष्टमी जो पर्व है ये भक्ति की माता है और इसको बहुत अच्छी तरह से जतन से पालन करने से हमारी भक्ति में बहुत वृद्धि होती है.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasati, there's an incident well recorded in relation to Bhaktisiddhanta Sarasati. It happened that on one occasion on Ekadasi, an invitation came to the ashram inviting the devotees that come for a program. We want you to come and preach and do kirtan for us. But the devotees were initially saying, no, today's Ekadasi, we're fasting, we're not doing any program today. But when Bhaktisiddhanta Sarasati heard this, he said, then give the devotees prasadam and send them for the preaching. He said, the preaching is more important than the fasting.
तो ऐसा एक प्रसंग आता है जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में जहाँ पर वो मंदिर में थे और बाकी सब भक्त थे, एकादशी का दिन था और सभी भक्त एकादशी जो उसका पालन कर रहे थे और वहां पर उनको एक इन्विटेशन आया जहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको एक प्रचार के लिए जाना है और एक बड़ा प्रोग्राम है वो करना है. तो भक्त लोगों ने मना कर दिया, कहा कि नहीं हम लोग आज नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग सब एकादशी का पालन कर रहे हैं. और ये बात जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सुनी तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो ठीक नहीं है, प्रचार ही हमारे को करना चाहिए. तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सभी भक्तों को आप प्रसाद दे दो, सबको खाना खिला दो और फिर सबको प्रचार के लिए भेजो क्योंकि वो बहुत जरूरी है.
So in a few days we will also be celebrating a festival which is in the calendar. It's called the Panihati Shiradahi Festival, the day in which Raghunath distributed Shira and Dahi to all Lord Nityananda and all of his associates at the place called Panihati, which is not far away from Calcutta. It's a small village there on the bank of the Ganga. And some great devotees were living there, like Raghava Pandit.
तो कुछ दिनों में अभी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव को मनाएंगे जिसको कहते हैं पानीहट्टी चीड़ा दही महोत्सव. तो जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी ने रघुनाथ ने अपना दही चीड़ा सब लोगों को वितरित किया था. तो ये घटना जो है वो घटी थी पानीहट्टी गांव में जो कि कलकत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और बहुत ही महान भक्त जैसे राघव पंडित इत्यादि जो है वो उस गांव में रहते थे. तो ये गंगा के किनारे ही है जहां पर ये उत्सव हुआ था.
Raghava Pandit was a very intimate associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He would every year go from Mayapur, he would go from his home Panihati, they'd go to Rath Yatra, they'd go and visit Puri, attend the Rath Yatra. And he and his sister, Raghava Pandit's sister Damayanti, they were both very expert cooks, and they would spend the whole year cooking preparations for Lord Chaitanya. And they would put them in a big sack, and they had many sacks, and they would take all the sacks with them when they went to Jagannath Puri, and they'd give it to Lord Chaitanya, bring all this prasadam. They would prepare special preparations, which would not go off, which would keep for a very long time. And they would cook them very expertly, carry everything to Jagannath Puri, just to give Lord Chaitanya.
So Raghav Pandit, Sri Chaitanya Mahaprabhu ke ek antarang parshad hai, bahut mahan bhakt hai, और वो पानीहट्टी में रहते थे, लेकिन हर वर्ष जगन्नाथ पुरी में जाते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित होते थे। और राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती, ये दोनों बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार के कुक थे, जो रसोइये थे, जिनको बहुत अच्छी तरह से भोजन बनाने के लिए आता था। और पूरे वर्ष भर वो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते थे, जिनको वो अलग अलग पात्रों में भर के रखते थे, और वो व्यंजन बना के पूरे साल भर वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए लेके जाते थे और उनको पुरी में देते थे।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी इनिशियली ही वाज द सन ऑफ ही वाज बोर्न इन अ वेरी वेल्थी फैमिली। हिज फादर वाज अरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार। देयर वर दीस टू ब्रदर्स, दे वर वेरी वेरी वेल्थी मैन, एंड दे वर मेंटेनिंग ऑल द ब्राह्मणस इन बंगाल। दे वर गिविंग चैरिटी टू in all the brahmanas in Bengal. So Raghunath Das was born in that family. But Raghunath Das was from his birth, he was attracted to renunciation. He was attracted to follow Lord Chaitanya. When Lord Chaitanya took sannyas, then he wanted to leave home and go there and join Lord Chaitanya.
So Raghunath jo the, वो बहुत ही संपन्न परिवार से थे, और उनके पिता हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, ये दो भाई थे जो कि बहुत ही धनी व्यक्ति थे। और बंगाल के अंदर वो बहुत जो ब्राह्मण थे उन सबका बड़ा ही ध्यान रखते थे, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक मात्रा में धन था। और इतनी प्रचुर मात्रा में धन होने के बाद भी वे बहुत ही अच्छी तरह से सभी ब्राह्मणों का ध्यान रखते थे। और रघुनाथ जो थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति बचपन से ही आकृष्ट हो गए थे, और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया तो रघुनाथ घर छोड़ के जाना चाहते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहते थे।
The family arranged a marriage for Raghunath. They got married to a very beautiful, attractive, chaste young woman, but still it didn't disturb Raghunath. He still wanted to leave home, and they were even thinking to tie him up, to get chains and tie him up. But then they thought, what is the good? He has a wife who is as beautiful as Lakshmi, the goddess of fortune, and he has as much wealth in the home as Kuvera, the treasurer of the demigods, and that can keep him. So what will be the good of having ropes or chains on him? Won't do any purpose.
तो रघुनाथ के माता पिता ने उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणी कन्या से करवा दिया था, जो कि बहुत ही दिखने में सुंदर थी, लेकिन फिर भी रघुनाथ का जो मन था वो हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ही आकर्षित होता था, और वे बार बार अपने घर से भाग जाते थे। तो उनके माता पिता ने सोचा कि ये बार बार इस प्रकार से भाग जाता है, तो इसको हम लोग जंजीरों से बांध के रखते हैं। तो उनके पिता ने कहा कि अरे, जिसको ये जंजीर, जिसकी इतनी अच्छी पत्नी है और जिसके पास इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्य है, ये वैभव और ऐश्वर्य जंजीर के रूप में जिसको बांध नहीं सकते हैं, उनको लोहे की या सोने की जंजीर कैसे बांध पाएगी?
So his father hired 10 men just to guard them because he's always running away. We have to send the men out to go and catch him and bring him back.
तो रघुनाथ को पकड़ने के का ध्यान रखने के लिए उनके पिताश्री ने 10 गार्ड को लगा के रखे थे, क्योंकि बार बार रघुनाथ भाग जाते थे तो ये गार्ड उनको जाके पकड़ कर और वापिस से ले आते थे।
So at one point Lord Chaitanya came to Shantipur, and so Raghunath got permission from his parents that he could also go there and meet Lord Chaitanya. And when he came there and met Lord Chaitanya, then he asked for Chaitanya. He told him, you know, that I want to leave home. I want to come with you. But Lord Chaitanya told him, no, you just go home. Just be a normal person. And you keep Krishna in your heart. Just behave like a normal person and do take care of your family affairs. In course of time, Krishna will arrange for you to be detached. Don't rush it. Don't push it.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार जब शांतिपुर आए तो रघुनाथ ने अपने परिवार से परमिशन लेके और वो उनको मिलने के लिए गए और जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो कहने लगे महाप्रभु को कि महाप्रभु अब मैं घर बार सब छोड़ छाड़ के और मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ और आपके आंदोलन में सम्मिलित होना चाहता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्रेम से रघुनाथ को समझाया और कहा कि कृपया आप इस प्रकार से कुछ कार्य न करें, आप अपने घर जाइए और अच्छी तरह से व्यवहार कीजिए और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो अभी आप इस प्रकार से विभल नहीं होइए अपने मन में और स्थिर होके अपने घर जाके और अपने माता पिता के साथ अपने परिवार के साथ अपना समय बिताइए और समय आने पर तुम मेरे पास आ जाओगे।
So this way Raghunath went home and he engaged just like a normal person, just like a family man who was like somebody interested in money and make sure that everything was taken care of nicely and that there was good money, a lot of money at home. And everyone was happy, his parents were happy, they think, oh, he's normal now, everything is okay. But actually in his mind, he was always thinking that I really want to go and be with Lord Chaitanya. I don't want this life, this worldly life is really not what I want. So it happened, Lord Chaitanya came to Panihati. Oh, Lord Nityananda, not Lord Chaitanya, Lord Nityananda came to Panihati. So when Raghunath heard how Lord Nityananda had come along with his associates, then Raghunath also got permission to go there and see Lord Nityananda. And at that time, Lord Nityananda requested Raghunath that I want you to put on a festival for everyone. Lord Nityananda said, I'm going to punish you. This is your punishment. You have to put on a festival, feed all the people. You know how it is in India when there's a feast, then a lot of people come. And so Raghunath was very happy because he's the son of a rich man. He has a lot of money, no problem. He's very happy. And he, you know, the village in Bengal, what do they eat? Especially this time of the year, it's very hot and humid. So the best things to eat, some flat rice, shira, and dahi. Dahi is very cooling. So they got a lot of big clay pots, earthen pots, and they brought all the flat rice, and they bought all the dahi, and they bought some curds and different things, different whatever milk and things they could find. And then they had people come with bananas and mangoes, and different things were brought. All the different vendors heard, and they all came there, and Raghunath could buy everything from everyone. And they were washing the shira in the Ganga, because Panihati is right on the bank of the Ganga. They would wash everything in the Ganga, and they made very nice shira dahi with fruits and put it all in pots. And then they offered everything, and then they could feel Lord Chaitanya. Although Lord Chaitanya was not present, everyone felt Lord Chaitanya actually appeared there.
तो रघुनाथ दास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बात मानकर अपने घर चले गए और एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करने लगे और अपने कार्य में अपने धंधे में बहुत ध्यान देने लगे, अपने परिवार के अंदर रहने लगे। तो उनके मित्रों ने और परिवार वालों ने सोचा कि रघुनाथ जो है वो अभी एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो गया है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन ही मन रघुनाथ हमेशा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का ध्यान करते थे और केवल इसी फिराक में रहते थे कि किस प्रकार से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकूं। तो कुछ समय के पश्चात पानीहटी में भगवान नित्यानंद वहां पर आए और जब उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु वहां पर आए हैं, रघुनाथ दास उनसे मिलने के लिए गए और जब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ को देखा तो उस रघुनाथ को बुलाया और कहा इधर आओ, अभी मैं तुमको सजा दूंगा और तुम्हारी सजा ये है कि जितने भी वैष्णव है उन सबको तुम्हें एक उत्सव के रूप में भोजन करवाना पड़ेगा। और जब रघुनाथ ने ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे बहुत ही धनी व्यक्ति के पुत्र थे और बहुत प्रचुर मात्रा में उनके पास धन था। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से मैं सबको जो है वो प्रसाद खिलाऊंगा। और फिर उस समय वो जाके मार्केट में और बड़े बड़े बर्तन जो है मिट्टी के वो लेके आए और बहुत सारा दूध लेके आए और जितनी भी सामग्री थी वो सारी सामग्री खरीद के लेके आए। उसमें केले थे, आम थे, कपूर था, ये सब लाके और गंगा में उन्होंने उस सारे बर्तनों को और चीड़ा को धोया और वहां पर चीड़ा बनाया, क्योंकि वो गर्मी का मौसम था तो उस समय सारे भक्तों को उन्होंने ठंडा ठंडा एकदम ये चीड़ा दूध और उसके साथ में दही चीड़ा जो है उसका सेवन करवाया।
So Lord Nityananda was very pleased with the festival. Everyone was so happy. Everyone got prasadam. Even the dogs got fed. What to speak? You know, all the poor people, the untouchables, and even the dogs were fed. So everyone was so happy. Lord Nityananda was very pleased. And Raghunath also, he gave some money to different people. He left money for Lord Nityananda. He didn't give it directly to Lord Nityananda, but he gave it to the treasurer, the personal administrator of the expenses for Lord Nityananda. He gave them gold coins and everything. So he made a really wonderful festival. So Lord Nityananda was very pleased, and he placed his lotus feet on the head of Raghunath, and he blessed him that very soon you will get delivered from your material plight and you will get shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
So, भगवान नित्यानंद प्रभु बड़े ही प्रसन्न हो गए रघुनाथ के इस कार्य से कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत ही प्रसन्न मच्चित होके और सभी भक्तों को दही चीड़ा का सेवन करवाया और इतना बड़ा उत्सव मनाया। और श्री रघुनाथ ने फिर सभी भक्तों को दही चीड़ा का सेवन करवा के यथा रूप से दक्षिणा दी हर किसी को, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भी दक्षिणा दी, लेकिन हालांकि डायरेक्टली उनको नहीं दी क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। इसके लिए उनके जो असिस्टेंट थे उनको उन्होंने दक्षिणा दी ताकि भगवान नित्यानंद के यात्रा के लिए और दूसरे खर्चे के लिए ये काम आवे। और रघुनाथ के इस भाव से प्रसन्न होकर नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके सिर पे अपना पैर रखा और पैर रख के आशीर्वाद दे के उनको कहा कि बहुत ही जल्द श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और उनके चरण कमल आपको प्राप्त होंगे।
So every year at Panihati, they try to organize this festival in commemoration of Lord Nityananda having the feast there and Raghunath having the Shiradai festival. Every year at this time, on that particular day, it's in a few days, they do this festival in a similar scale. And many different Gaudiya Vaishnavas come and they have kirtan party and people preaching and doing prachar and distributing prasadam also. Very nice festival.
So har varsh is Panihati is jagah mein bhakt log jo hai wo jaake aur is chida dahi utsav ko manate hain aur bahut sare Gaudiya Vaishnav jo bhakt hai alag alag wo jaate hain aur Ganga ke kinare इस उत्सव जो आज के दिन में मनाया था श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो भक्तों को चीड़ा दही का सेवन करवाया था उसके मनाने के लिए वहां पर जाते हैं और जाके बहुत ही बड़ा उत्सव करते हैं, कीर्तन करते हैं, अलग अलग टीम में भक्त लोग जाके और सब लोग जाके बहुत ही अच्छा उत्सव इस दिन मनाया जाता है जो अभी कुछ दिन में आने वाला है।
And this festival has become popular. Many ISKCON centers around the world. I remember a few years ago, I was in Dubai on this day, and we went out to the park somewhere with all the devotees. Sri Balabha Prabhu organized, and we had a big Shiradahi festival for all the devotees. So it's going on around the world, in America, especially in Atlanta. They have a very big festival on this day. Usually His Holiness Jaipataka Swami would be there in Atlanta and he would organize it. And he would personally cook and prepare the Shiradahi for everyone. It's a very, very enjoyable festival. People all participate in it.
ये उत्सव जो है ये पूरे ही विश्व भर में बहुत सारे इस्कॉन मंदिरों में बहुत ही ज्यादा विख्यात हो गया है और हर जगह पे बहुत ही उत्सव से मनाया जा बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। कुछ वर्ष पहले जैसे कि मैं दुबई में आया था तो वहां पर भी भक्त लोग ने बहुत अच्छी तरह से इस उत्सव को मनाया और हम एक पार्क में गए थे, शिवल्ला प्रभु ने ये ऑर्गेनाइज किया था और समुद्र के किनारे जाके हमने बहुत ही अच्छी तरह से इस उत्सव को मनाया था, बहुत आनंद आया था और विश्व के अन्य केंद्रों में भी बड़े ही उत्साह के साथ में ये मनाया जाता है। मुख्य रूप से अटलांटा जो है वहां पर ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज हर वर्ष वहां पर जाते थे और अपने हाथों से स्वयं कुक करते थे और दही चिड़ा बना के और बहुत ही बड़े लेवल पे इस दही चिड़ा उत्सव को मनाते थे। तो हर जगह पर ये उत्सव जो है ये बहुत ही आनंद पूर्वक मनाया जाता है।
So after Lord, after Raghunath Das had got the mercy from Lord Nityananda, then he went back home, and a short time after that he was able to escape from his home and he went to Jagannath Puri and he stayed there with Lord Chaitanya, and as long as
Hare Krishna.
Hare Krishna. We lost Maharaj.
Hare Krishna Maharaj.
I think we lost his voice.
Yeah.
Yeah. Sunil was mentioning about the storm.
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, your mic is mute, Maharaj. If you can unmute it. We couldn't hear you last couple of sentences. Ritesh Prabhu, you can unmute Maharaj's mic.
Yeah, just I will.
Yes. Okay, now it's okay. Yeah.
Hare Krishna Maharaj, we couldn't hear you last couple of sentences, Maharaj.
Okay, what we were, I was saying about Raghunath, that he went back to, he went home and then he escaped from home, went to Puri and he stayed with Lord Chaitanya. After Lord Chaitanya disappeared and finished his pastimes, then Raghunath went to Vrindavan and he stayed in Vrindavan with Rupa and Sanatan. And then Raghunath also moved to Radhakund. His place was Radhakund and he excavated the Radha and Shyamakund. Lord Chaitanya had revealed to everyone the actual place of Radhakund was not known. It was Lord Chaitanya Mahaprabhu who personally came there, went into the middle of the rice field and told everyone, this is Radhakund. So Raghunath Das, when he came to Vrindavan, he eventually took his bhajan place there at Radhakund. But he had no money. He didn't bring any money with him. And although he was from a rich family, he had no money. But it happened that there was one man who was going up the Himalayas and he was going up to Badrinath or Kedarnath. He was planning to give some charity there. But while he was on his way in the Himalayas, he had a dream. And in the dream, he was told, you go to Vrindavan, you go to Radhakund and give this money to Raghunath Das. He's waiting there. He needs this money. And so the man got the dream, and with the order in the dream, he came all the way back and he came to Radhakund. He found Raghunath Das and he gave him all the money he had. And Raghunath used that money to excavate the kunds that we know today, Shyamakund and Radhakund, very beautiful places.
तो रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ वापिस से नित्यानंद भगवान की कृपा प्राप्त करके पानीहट्टी से अपने घर आए और घर में वो रहने लगे और कुछ वर्षों के बाद में वो फिर अपने घर को छोड़ के और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सफल हो सके और वो फिर जगन्नाथपुरी में जाके उनके साथ में रहे कई वर्षों तक और उसके बाद सब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना शरीर त्याग कर दिया तो रघुनाथ वहां से निकलकर और वृंदावन चले गए और शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के सानिध्य में रहने लगे और वहीं पे वो रहने के उपरांत में उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा के द्वारा राधा कुंड और श्याम कुंड जो है उसका उन्होंने निर्माण किया क्योंकि ये एक चावल का एक खेत था और उस खेत के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इंडिकेट किया था कि यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो लेकिन जब रघुनाथ वहां पर राधा कुंड के पास में रहने लगे तो उनके पास धन नहीं था, वो अपने साथ में धन लेके नहीं आए थे, तो किस प्रकार से उसका निर्माण करते। तो एक व्यक्ति था जो भक्त था जो हिमालय में जा रहा था और वो वहां जाके कोई बड़ी दक्षिणा देना चाहता था लेकिन उसको सपना आया और सपने में उसको ये आभास हुआ और सपने में उससे कहा गया कि आप वहां पर नहीं जाओ हिमालय में लेकिन वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाके और रघुनाथ दास को ये धन दे दो और उस धन से फिर वो अपने राधा कुंड को और श्याम कुंड का निर्माण करने में लगाएंगे। और फिर उस व्यक्ति ने उस धन को लाके रघुनाथ दास को दे दिया और रघुनाथ दास ने उस धन से राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण किया और वहीं पर अपनी भजन कुटीर बना के और रघुनाथ दास रहने लगे।
So the important point in this pastime with Raghunath Das is that you don't go to Lord Chaitanya, you don't go to Krishna first. You have to go to the spiritual master. Lord Nityananda represents the spiritual master. So after Raghunath Das got the mercy of Lord Nityananda, then he was able to approach and get shelter of Lord Chaitanya.
So this lila se humko ye shiksha milti hai ki humko डायरेक्ट ही भगवान कृष्ण के पास नहीं जाना चाहिए लेकिन गुरु की शरण में जाना चाहिए, जैसे कि रघुनाथ नित्यानंद की शरण में गए थे और गुरु की शरण में जाके गुरु के आशीर्वाद से ही हमको भगवान श्री कृष्ण के जो चरण प्राप्त होते हैं, ये शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी के इस प्रसंग से हमको प्राप्त होती है।
The Jagannath deities, when we have the bathing of the Jagannath deities.
तो अभी कुछ दिन में दही चिड़ा उत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद एक और बड़ा उत्सव आता है जिसको कहते हैं जगन्नाथ स्नान यात्रा। ये भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस माना जाता है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ को बहुत ही अलग अलग पानी से उनको नहलाया जाता है और उनकी स्नान यात्रा मनाई जाती है।
So the deities, all Jagannath, Baladev, Subhadra, they're all bathed with Panchagavya, and after the bathing and everything, then it's said they're not well. They get some sickness from the bathing, and the result is there's no more darshan of Jagannath for 2 weeks, for some 14 days. There's no darshan. They're not in the temple. So at that time, when there's no darshan, Lord Chaitanya Mahaprabhu would leave Jagannath Puri and he would go to Alanath and he would stay in Alanath and every day he would go to see the Alanath deity, which is actually a Vishnu temple. But that Vishnu temple, although it's a Vishnu deity, is actually worshipped with Krishna mantras. So it's said that that Vishnu deity is actually Krishna. But there's a pastime, maybe you know the pastime, how Krishna is in the Vrindavan forest and the gopis are looking for Krishna. Where is Krishna? Where is Krishna? And Krishna wants to hide from them. So Krishna took the form of Vishnu. He took a four-armed form. And then the gopis came and they saw Lord Vishnu and they offered their obeisances. And they said, oh, Lord Vishnu, did you see where Lord Krishna went? And so he said, oh, yeah, he went that way, he went that way. So the gopis all went running off looking for Krishna. They didn't realize that this was Krishna. He'd taken a Vishnu form. But when Srimati Radharani comes, then Lord Vishnu cannot maintain his four-armed form and he again becomes a two-armed form of Krishna. So that form of Alanath is worshipped like that, in that manner, with Krishna mantras, although it's a Vishnu deity. So Lord Chaitanya, he actually, and of course he's a Krishna bhakta, Lord Chaitanya wants to worship Krishna. And so he went there to Alanath and he was worshipping there. He'd stay there for 14 days and then time came for Rath Yatra, then he'd come back to Jagannath Puri.
So this snan yatra ke din Jagannath Baladev Subhadra Maiya ki murtiyon ko pehle panchagavya se aur fir pani se snan karaya jata hai aur bahut sara pani se snan karne pe भगवान बीमार पड़ने की लीला करते हैं और 14 दिन तक भगवान दर्शन नहीं देते हैं, उनको बुखार हो जाता है और 14 दिन तक किसी को दर्शन नहीं मिलते हैं। तो इस दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के रूप में जगन्नाथपुरी से थोड़े दूर अलारनाथ चले जाते थे। तो अलारनाथ में भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये चतुर्भुज मूर्ति की पूजा भी जो है वो कृष्ण मंत्र से की जाती है। तो हालांकि ये चतुर्भुज विष्णु है लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण ही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम में आती है कि एक बार भगवान रासलीला करते करते गोपियों से अलग हो गए और फिर उन्होंने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण कर लिया। और गोपियां जब ढूंढने लगी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तो ढूंढते ढूंढते वो गए तो उनको विष्णु दिखाई दिए और विष्णु ने फिर कहा कि अच्छा कृष्ण इस तरफ गए हैं और गोपियां वहां पर चली गई, लेकिन जब राधा रानी पीछे से आई तो जो कृष्ण थे विष्णु के रूप में थे वो अपना चतुर्भुज रख नहीं पाए और राधा रानी को देख के ही उनके दो हाथ जो थे वो अपने आप गायब हो गए, तो राधा को पता चल गया कि यही श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से ये कृष्ण जो है, तो अलारनाथ जो है ये कृष्ण ही है हालांकि विष्णु के रूप में है। तो 14 दिन तक जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाते थे तो अलारनाथ में रहते थे और 14 दिन के बाद में रथ यात्रा के दौरान वापस से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ जाते थे।
So these are just some points about some of the festivals which are taking place this week. I hope it was something interesting for you. I don't know if you have any questions you'd like to ask. Now would be a good time.
Maharaj, I think you had agreed for an hour, but it's nearly 1.5 hours. We don't mind. I mean, it's up to you. We can surely ask the devotees for questions if you are okay. I would request Ratish Prabhu, please can you unmute and let them raise their hands?
Yeah, I will. Now participants can unmute themselves.
Yeah.
तो महाराज अभी बोल रहे थे कि ये इस हफ्ते में कुछ उत्सव है जो अभी इस समय आए हैं और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इससे फायदा हुआ होगा, तो मुझे पता नहीं अभी आपको प्रश्न पूछना है कि नहीं। तो राधा बाबा प्रभु बता रहे हैं कि महाराज से 1 घंटे हमने बात किया था लेकिन 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन फिर भी महाराज सभी को प्रश्न पूछने के लिए कह रहे हैं। तो जिस किसी का भी प्रश्न है आप अपने आप को अनम्यूट करके और महाराज से प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?
You have a lot of hearers, there's a lot of yes. people online. How many?
It was showing maximum 185 at one time, but you know there are a lot of families inside Maharaj, so there should be at least 300 people to 400 who are watching you.
My goodness.
Oh. The whole of UAE is there now.
Yeah.
Kamaldesh, Kamaldesh, Avtardesh, Shamdesh, everybody is there.
And there are some places where there are more devotees staying in Namhatta.
Okay, and is there any question anywhere?
I didn't see any. So thank you, Maharaj. I think I don't want to delay you for the morning Mangal Arati, and we are very honored. And announcements are there that His Holiness will again speak on the 12th of June, early morning for Shamadesh Mangal Arati. We're going to have His Holiness. That's not this Friday, the next Friday. So you can still, if you have any questions, please keep it at the time, because we'll have more time at that time. His Holiness will be speaking for nearly 1.5 hours.
Yes. So, give me the. Make sure you give me the verse for that class.
Yes, yes.
Right?
I'll be sending this to His Holiness. And for those who came in late, His Holiness Bhakti Vignabhinash Narasimha Swami Maharaj has been in this movement from 1971. He got initiated in London by His Divine Grace Srila Prabhupada's mercy. And he is one of our very staunch preachers in the Far East, in China, Thailand, Hong Kong, Singapore, and
at this time in Mayapur.
And now Maharaj is giving mercy from Mayapur. So he's also the faculty for Mayapur Institute for many years, and he's been teaching there. So we are very kind and fortunate that Maharaj has showered his mercy with so much nectar. So I thank everybody for participating, and it's an auspicious day today that all of you all got mercy from him. So we'll chant Hare Krishna Mantra for Maharaj's good health and for all the devotees in Mayapur. Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Hare Prabhupada
ki jai. Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Anand Anandadesh. Some of the devotees there have been found with COVID. Just in the morning, I had come to know about 5 or 6 devotees are suffering. So, I'd like to have prayers for those devotees in Anand Anandadesh who are having this COVID-19. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
वंचा कल्पति रूपिश्च कृपा
कृपा सिंधु
मेवच नमामि वैष्णवेभ्य नमो
नमः
Prabhu, thank you very much for the Hindi translation. You did a wonderful job.
Wonderful, very, very nice, Prabhu. It was very nice translations, Hindi translation.
Good translation, Prabhu.
Thank you. Hare Krishna.
Thank you, Prabhuji.